न्यारा कैबिन से बाहर निकली तो उसने फोन उठाया। स्क्रीन ऑन होते ही नोटिफिकेशंस की लाइन दिखी। जॉइंट ग्रुप 23 नए मैसेज। न्यारा ने भौहें चढ़ाई और मैसेज पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो ऊपर स्क्रॉल करती गई, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। कभी हल्की हंसी, कभी सिर हिलाना। हे भगवान, उसने हल्के से अपने सिर पर हाथ मार लिया। लोग भी ना कुछ भी सोच लेते हैं। उसने गहरी सांस ली और ग्रुप में टाइप करने लगी। न्यारा, आप लोग सीरियल देखना कम कर दिया करो। कुछ सेकंड में ही सीन आने लगे। फिर उसने अगला मैसेज भेजा। सर और मैं, प्लीज़, वो मेरे बॉस हैं और मैं उनकी एम्प्लॉय, बस उतना ही। थोड़ा रुककर उसने आखिरी लाइन लिखी। और हाँ, अगर कभी कुछ होगा भी ना, तो ऑफिस के जॉइंट ग्रुप को सबसे पहले पता नहीं चलेगा। ग्रुप में तुरंत रिएक्शन आने लगे। ओके ओके, क्लियर है मैडम। इंद्रजीत, कहा था ना बेवजह मत सोचो। नैना, फिर भी कहानी अच्छी बनती। न्यारा ने फोन लॉक किया। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल पूरी तरह शांत। उसका जवाब ऐसा था कि किसी को शक करने की वजह नहीं मिली। विक्रांत कपूरिया का पूरा ऑफिस जैसे उलट पुलट हो चुका था। हर फाइल, हर दराज, हर कंप्यूटर, सब कुछ खंगाल लिया गया था। छापा मारने वाली टीम ने रिकॉर्ड्स अपने साथ ले लिए थे और उनमें से काफी कुछ ऐसा था जो साफ तौर पर गलत था। टीम के जाते ही ऑफिस में एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन वो खामोशी ज्यादा देर नहीं टिकी। विक्रांत कपूरिया अचानक अपनी कुर्सी से उठा। उसकी आंखों में गुस्सा था, कच्चा जहरीला गुस्सा। उसने सामने खड़े अपने असिस्टेंट जीवन की तरफ देखा और लगभग दहाड़ते हुए बोला, आर्यन का एक्सीडेंट करवा दो या फिर गोली मरवा दो, मुझे उस आदमी का जिंदा रहना बर्दाश्त नहीं है। उसके शब्दों में नफरत टपक रही थी। मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ, वो आगे बोला। आज कंपनी के ऑफिस में भी मेरी बेइज्जती की, मेरे ऑफिस पर भी उसी ने छापा मरवाया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जीवन ने एक पल सोचा, वो विक्रांत को जानता था, गुस्से में वो कुछ भी कह सकता था, लेकिन हालात इस वक्त बहुत नाजुक थे। बात आपकी ठीक है सर, जीवन ने सावधानी से कहा, लेकिन क्या ये सही समय है? अभी अगर हम उसका एक्सीडेंट करवा दें या उसे गोली लग जाए तो शक सीधे हम पर आएगा। वो थोड़ा झुका, आवाज और धीमी कर ली। आर्यन पहले ही ड्रग्स के केस में उलझा हुआ है, ऊपर से हमारा नाम भी धीरे धीरे सामने आने लगा है। इस वक्त अगर उसके साथ कुछ भी हो गया तो हम खुद बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। जीवन कोशिश कर रहा था कि विक्रांत का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़े। ठीक है, उसने आगे कहा, हम उसका मर्डर नहीं करवाते, लेकिन एक्सीडेंट भी रिस्की हो सकता है। अगर ज्यादा नुकसान हो गया तो मामला हाथ से निकल सकता है। विक्रांत कुछ पल चुप रहा, उसकी उंगलियां मुट्ठी में बंधी हुई थीं। फिर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आई, ठंडी, खतरनाक। तो एक्सीडेंट नहीं, उसने धीरे धीरे कहा, लेकिन उसे ऐसा सबक मिलना चाहिए कि वो ऑफिस आने के काबिल ही ना रहे। उसने जीवन की तरफ देखते हुए साफ शब्दों में कहा, हम अपनी टीम के लोगों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाहर के लोग होंगे जो पैसे लेकर मारपीट करते हैं। अगर कोई पकड़ा भी गया तो वो हमारा आदमी नहीं होगा। उसने आखिरी वार किया, उसकी टांगे तुड़वा दो, जिंदा रहे मगर हमारे सामने आने लायक न रहे। जीवन ने सिर हिलाया। जी सर, वो बोला, आर्यन को गुंडों से पिटवा दिया जाएगा, हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, जिंदा रहेगा लेकिन हमारे रास्ते में नहीं आएगा। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली, बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन उसी पल नीचे दिमाग के अंधेरे कोनों में एक खतरनाक प्लान तैयार हो चुका था। जैसे ही आर्यन की गाड़ी उस पुराने पुल के पास पहुंची, माहौल अचानक भारी हो गया। सड़क पर सन्नाटा था और आसपास की लाइटें या तो बंद थीं या आधी जली हुई, जिससे पुल का इलाका और भी डरावना लग रहा था। पुल के नीचे अंधेरे में पहले से ही 4-5 गुंडे छुपे हुए थे। ये वही लोग थे जिन्हें विक्रांत कपूरिया ने पैसों के दम पर हायर किया था। सबको साफ निर्देश थे, गाड़ी रोको, आदमी को बाहर निकालो और उसकी टांगे तोड़ दो। आर्यन की गाड़ी जैसे ही पुल के ठीक सामने पहुंची, सड़क पर बिखरे पत्थरों और लोहे के मोटे टुकड़ों से टकराई। टायर फिसल गए, ब्रेक जोर से लगे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल पुल के नीचे से साए निकलकर ऊपर आने लगे, गुंडे। उनके हाथों में रॉड, डंडे और लोहे की चेन थी। वे तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़े, तभी गाड़ी का दरवाजा खुला, एक आदमी बाहर उतरा, लेकिन वो आर्यन नहीं था। गुंडे अचानक रुक गए, एक दूसरे की तरफ देखने लगे, ये कौन है? आर्यन तो ये नहीं लग रहा। उसी पल माहौल में कुछ अजीब सा बदल गया। दूर से सायरन की आवाज गूंजने लगी, नीली और लाल बत्तियां अंधेरे को चीरती हुई पास आती दिखी। पुलिस, एक गुंडा घबराकर बोला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुल के दोनों तरफ से पुलिस की गाड़ियां आ चुकी थीं। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका घिर चुका था। उस आदमी ने जो गाड़ी से उतरा था, अपनी जेब से आईडी निकाली और ऊंची आवाज में बोला, पुलिस, कोई भी हिलेगा नहीं। गुंडों के चेहरे उड़ गए, उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता पहले से बंद था। कुछ ही पलों में सभी गुंडों को जमीन पर गिराकर हथकड़ी पहनाई जा चुकी थी। उसी वक्त पीछे खड़ी एक दूसरी गाड़ी से असली आर्यन बाहर निकला।
उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में सख्ती साफ झलक रही थी। असल में ये पूरा सीन एक चाल था। जिस आदमी को गुंडों ने आर्यन समझा, वो कोई आम आदमी नहीं था, वो पुलिस ऑफिसर था। और ये सब संभव हुआ था एक ऐसे शख्स की वजह से जिस पर किसी को शक तक नहीं था। जमाल, विक्रांत कपूरिया की टीम का ही आदमी, वही जमाल जिसने अंदर की सारी जानकारी पहले ही आर्यन तक पहुंचा दी थी, वही जमाल जिसने समय, जगह और हमला सब कुछ पुलिस को बता दिया था। गुंडे गिरफ्तार हो चुके थे, हथकड़ियों में जकड़े हुए, पुलिस की गाड़ियों में बैठाए गए। उनमें से कोई भी विक्रांत कपूरिया तक ये खबर नहीं पहुंचा सका कि उसका प्लान बुरी तरह फेल हो चुका है। और इसी खामोशी का फायदा उठाते हुए आर्यन खुद विक्रांत के घर पहुंच गया। कपूरिया हाउस उस वक्त रोशनी से भरा हुआ था, लेकिन अंदर का माहौल अजीब तरह से ठंडा था। गार्ड्स ने जैसे ही आर्यन को देखा, एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर दरवाजा खोल दिया। नाम ही काफी था। आर्यन बिना रुके अंदर चला गया, सीधे ड्राइंग रूम में। विक्रांत कपूरिया सोफे पर बैठा कुछ फाइलें देख रहा था। उसने जैसे ही आर्यन को सामने खड़ा देखा, उसकी उंगलियां फाइल पर जम गई। चेहरे पर हैरानी की जगह एक बनावटी शांति आ गई। तुम यहाँ? विक्रांत ने संयमित आवाज में पूछा। आर्यन ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई, उसने एक कदम आगे बढ़ाया, आंखों में सीधा आरोप था। तुम्हारी ये गंदी चालें मुझ पर नहीं चलेंगी विक्रांत। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें आग छुपी हुई थी। तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे, तुम चाहते थे कि मैं डर जाऊं, पीछे हट जाऊं। विक्रांत ने हल्की मुस्कान ओढ़ी। तुम क्या कह रहे हो आर्यन, मुझे समझ नहीं आ रहा। आर्यन हंसा, लेकिन वो हंसी ठंडी थी। समझ नहीं आ रहा? उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तो फिर आज पुल के नीचे जो इंतजाम था, वो किसके लिए था? उस पल विक्रांत की आंखें जरा सी झपकी, बस एक पल, लेकिन आर्यन ने देख लिया। तुम सोचते हो मैं नहीं समझता? आर्यन ने आगे कहा। आर्यन ने एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, मैं अपने भांजे की कस्टडी लेकर रहूंगा, कोई भी ताकत, कोई भी चाल, कोई भी आदमी मुझे नहीं रोक सकता। विक्रांत की आवाज अब थोड़ी ऊंची हो गई। तुम नहीं जानते तुम किस आग से खेल रहे हो, आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आग में तो खुद खेल रहे हो विक्रांत, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम समझ रहे हो कि सब तुम्हारे कंट्रोल में है, और सच ये है कि अब कुछ भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। विक्रांत ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तुम बहुत भरोसे में हो। हाँ, आर्यन ने बिना झिझक कहा। जाने से पहले एक आखिरी बात कही, जय सिर्फ एक नाम नहीं है विक्रांत, वो मेरी जिम्मेदारी है, और जो कोई भी उस जिम्मेदारी के बीच आएगा, वो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। दरवाजा बंद हुआ। विक्रांत कपूरिया वहीं खड़ा रह गया। चेहरे पर गुस्सा था, डर था, और कहीं ना कहीं एक कड़वी सच्चाई भी,
कि ये लड़ाई अब सिर्फ चालों की नहीं रही, ये लड़ाई अब सीधे आमने सामने की हो चुकी थी।